We're reading from the Prabhupada Lilamrita, volume's a little too high. Prabhupada Lilamrita, chapter 1 of the 5th volume, now it's the 5th volume.
Srila Prabhupada Lilamrita, 5th volume, pehla adhyaya.
This is descriptions of 1971, New Delhi, India.
1971 के बारे में जो घटनाएं हुई उनके बारे में विस्तार से बताया गया.
So I will read a few sentences and you'll give the Hindi. Follow carefully, please. This is yoga. A few of Prabhupada's disciples had organized a New Delhi Pandal program like the public festivals Prabhupada had already introduced in India.
Prabhupada ke kuch shishyon ne Nayi Delhi Pandal karyakram ka ayojan usi tarah kiya tha jis tarah Bharat mein sarvajanik utsavon ka prarambh Prabhupada pehle bhi kar chuke the.
Jamal Krishna, Tejas and Guru Das had enlisted the help of important Delhi men, including the mayor and members of New Delhi's management and reception committee.
Damal Krishna, Tejas aur Guru Das Delhi ke pramukh vyaktiyon ki sahayata ka aashwasan pehle hi prapt kar chuke the. Inme mayor aur Nayi Delhi ke prabandh aur swagat samiti ke sadasya sammilit the.
So 1971, the movement is not that old yet.
1971 mein jo ये आंदोलन था बहुत परिपक्व नहीं था.
I joined in 1968. This is only 3 years later.
महाराज बता रहे हैं कि उन्होंने 1968 में आंदोलन ज्वाइन किया था तीन साल पहले.
I wasn't asked to go to India, so I was in San Francisco and then Los Angeles at that time.
महाराज बता रहे हैं मैं उस समय भारत नहीं आ पाया था, उस समय मैं सैन फ्रांसिस्को में था.
But the Mahakrishna was in India, so the Mahakrishna Maharaj, he was a general. Prabhupada needed a general.
दोस्त में तमाल कृष्ण भारत में थे, वह प्रभुपाद के सेनापति थे.
Certainly Prabhupada saw his movement like an army in a war against Maya.
और निश्चित रूप से श्रीला प्रभुपाद इस आंदोलन को एक सेना के रूप में देखते थे, ऐसी सेना जो माया के विपरीत युद्ध कर रही है.
So in that war against Maya, Tamal Krishna Maharaj was a general.
और इस युद्ध में जो माया के प्रति श्रीला प्रभुपाद ने छेड़ा था, तमाल कृष्ण महाराज सेनापति थे.
So Prabhupada would move him around to different places where he wanted to get things done. He didn't always do things perfectly. He was not infallible, but generally speaking, Prabhupada really relied on him to get the job done.
और ऐसे बहुत सारे घटनाएं आती हैं जब प्रभुपाद ने तमाल कृष्ण महाराज को अलग अलग जगहों से हटा के अपने पास बुलाया जब वे निश्चित रूप से अपने काम को अंजाम देना चाहते थे. हालांकि श्रीला प्रभुपाद खुद ही परिपक्व थे अपने सारे कार्य को करने के लिए, परंतु फिर भी वे तमाल कृष्ण महाराज पे आश्रित रहते थे.
One thing that's important to note is that in the previous highly successful Delhi and I guess actually in Mumbai, the highly successful Pandal programs where tens of thousands of people were coming.
इससे पहले दिल्ली से पहले मुंबई में पंडाल प्रोग्राम हुए थे, और खासकर दिल्ली और मुंबई में जो पंडाल प्रोग्राम उस समय हुए थे वे बहुत ही बड़े स्केल पे सफल थे, और यहाँ कई हजारों की संख्या में रोज लोग आते थे.
तमाल कृष्ण महाराज गेव अ रिपोर्ट टू श्रीला प्रभुपाद ऑन द सक्सेस ऑफ द पंडाल्स.
तमाल कृष्ण महाराज ने श्रीला प्रभुपाद को इन पंडाल प्रोग्राम्स के बारे में बताया.
So then Prabhupada saying, yes, very good, very good.
तब श्रीला प्रभुपाद ने कहा, हाँ बहुत अच्छा, बहुत अच्छा.
Then Prabhupada asked him, so you are holding Srimad Bhagavatam class every day?
और तब श्रीला प्रभुपाद ने पूछा, तो क्या आप रोज श्रीमद भागवतम क्लास का आयोजन करते हैं?
At least he gave an honest answer.
दोस्तों में तमाल कृष्ण महाराज ने बहुत ही ऑनेस्ट रिप्लाई, ईमानदार से उत्तर दिया.
You know that saying, sheepish, do they say that in India? Quite a shame, Prabhupada said. I mean, Tamal Krishna Maharaj said, no, Srila Prabhupada.
और तमाल कृष्ण महाराज ने ईमानदारी से परंतु बहुत ही डरते हुए श्रीला प्रभुपाद को उत्तर दिया, नहीं श्रीला प्रभुपाद।
I didn't care that the program was so successful. When he heard there was no Vaidhi Bhakti, he became angry.
और उस समय श्रीला प्रभुपाद ने इसकी परवाह नहीं की कि कितने लोग आ रहे हैं, परंतु जब उन्होंने देखा कि वैदिक भक्ति के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है, तब वह बहुत ही क्रोधित हुए।
His relationship with Tamal Krishna Maharaj was that, you know, he counted him very strongly, but at the same time, if Tamal Krishna Maharaj made mistakes, then Prabhupada chastised him severely.
Alankish,
he could handle it, you know. He could handle it. So Prabhupada would chastise him severely from time to time, quite often actually.
हालांकि श्रीला प्रभुपाद तमाल कृष्ण महाराज पर काफी कार्यों के लिए आश्रित रहते थे, परंतु जब तमाल कृष्ण महाराज गलती करते थे तब जब श्रीला प्रभुपाद उनको बहुत ही ज्यादा डांटते थे, तमाल कृष्ण महाराज इतनी डांट सहन कर सकते थे।
We understand the chastisement by the spiritual master is also mercy. It's not something bad, it's on the absolute plane.
हमें ये समझना आवश्यक है कि जब आध्यात्मिक गुरु हमें डांटे तो ये भी उनकी कृपा है, क्योंकि आध्यात्मिक स्तर पे हर चीज दिव्य है, एब्सोल्यूट है।
प्रभुपाद's response was very stern when he heard this news.
श्रीला प्रभुपाद का जो रिएक्शन था जब उन्हें पता लगा कि भागवतम क्लास नहीं हो रही, तो बहुत ही गुस्से वाला था, बहुत ही स्ट्रिक्ट था।
What is this nonsense?
तो ऐसा क्यों कर रहे हो आप सब?
Why you have not done?
आप सबने ऐसा क्यों किया?
You will spoil everything. Never mind, you're doing big programs. But if you are doing big programs, but if there's no sadhana bhakti, then everything is ruined.
तब श्रीला प्रभुपाद ने बताया आप इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स कर रहे हैं, परंतु अगर वैदिक भक्ति नहीं है, उनका पालन नहीं किया जा रहा है, तो ये सब कुछ खत्म कर देगी।
You must order proper classes immediately.
तो तुम्हें भागवतम क्लासेस प्रतिदिन आयोजित करनी चाहिए।
So from this we see that big preaching is not an excuse for forfeiting Vaidhi Bhakti, the regulated principles, orders of Acharya cannot be thrown out in the name of preaching. Cannot be done.
और इससे हमें पता लगता है कि बड़े बड़े प्रचार का आधार पे ऐसा नहीं है कि हम अपने जो वैदिक भक्ति के नियम हैं उनका पालन ना करें। भागवतम क्लास रोज सुननी चाहिए।
Because Prabhupada knew, but Tamal Krishna Maharaj did not know. Jai Shri Shri Radhe Radhe. Jai Shri Shri. What Prabhupada knew that Tamal Krishna Maharaj didn't know is that devotees would become very weak, and thus they would begin to think about sex life, economic development, or they would leave ISKCON. So many problems would come up because the root of the tree was not being watered properly. This Prabhupada could understand, but even his top men they could not understand.
जो तमाल कृष्ण महाराज को नहीं पता था, परंतु श्रीला प्रभुपाद जानते थे कि अगर भक्त भागवतम क्लास नहीं सुनेंगे, उसका श्रवण नहीं करेंगे, तो वह कमजोर पड़ जाएंगे, और जब वह कमजोर पड़ जाएंगे तो इस विश्व के अन्य अन्य चीजों के बारे में सोचेंगे, आर्थिक लाभ, मैथुन जीवन, इन सब के बारे में।
The next name mentioned here as an organizer of the Delhi Pandal is Tejash Prabhu.
और यहाँ पे एक और नाम लिखा है तेजस प्रभु का, जिन्होंने दिल्ली पंडाल प्रोग्राम का आयोजन करने में बहुत सहायता की।
तेजस प्रभु इज स्टिल अ डिवोटी इन गुड स्टैंडिंग इन ISKCON.
जो तेजस प्रभु हैं, वे आज भी ISKCON में एक बहुत अच्छी पद्धति के भक्त हैं।
एक्सेप्ट विद हिज गॉड ब्रदर्स, ही इज नॉट फेमस नाउडेज, पीपल डोंट नो मच हु ही इज।
हालांकि आज के भक्त उनको नहीं जानते, वे इतने प्रसिद्ध नहीं हैं।
But actually, a very strong statement made by Prabhupada honoring Tejas, everyone should know.
परंतु श्रीला प्रभुपाद ने तेजस प्रभु पे जो वाक्य कहे, बहुत ही शक्तिशाली वाक्य कहे हैं, जिन्हें हम सबको जानना चाहिए।
Because Tejas used to be centered here in Delhi. Practically speaking, he started the Delhi, more or less, he started the Delhi temple.
तेजस प्रभु ने ही दिल्ली में जितने मंदिर हुए उनका जो उनका प्रारंभ किया था।
And he worked for many years. It used to be a house. When I first came in 1974, the Delhi temple was a two-story or maybe three-story house. And you know, it was not at all a fancy situation. The devotees are just, you know, the word retrofitted, they simply remodeled it to make it a temple. But the deities were still, at that time, Shishi Radha Parsharati. So they're some of the original deities in this God.
जब मैं 1974 में पहली बार यहाँ आया था, महाराज बता रहे हैं, तब दिल्ली में जो मंदिर था सिर्फ दो या तीन मंजिल का एक घर था जिसके अंदर विग्रह थे, तब भी विग्रह श्री श्री राधा पार्थ सारथी के थे। हालांकि उस समय ऐसे बड़े बड़े मंदिर नहीं थे जो आज हम देखते हैं, सिर्फ साधारण दो एक छोटा सा घर था उसके अंदर विग्रह थे और उसी को मंदिर कहते थे।
So we know, we see how it's only as Gopal Krishna Goswami carried on the foundation work laid by Tejas Prabhu and the crew of devotees at that time.
और अब हम देखते हैं कि कैसे आज हिजुलनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने उस समय जो बीज बोया गया था तेजस प्रभु और अन्य उस समय भक्तों द्वारा उसको कैसे फल फूलित किया है, कैसे अंजाम दिया है।
So at that time Prabhupada said, Delhi means Tejas.
उस समय
it's a direct quote. Delhi means Tejas.
उस समय श्रीला प्रभुपाद ने ये शक्तिशाली वाक्य कहा, उन्होंने कहा दिल्ली का मतलब तेजस।
He was another man who could get the job done. He was not, you know, how to say it. He was not, I guess you could say aggressive almost, but I mean to say that he was not as big a mover, we say in America, mover and shaker. Mover and shaker, you know. As the Mahakrishnamaraj was like a five-star general in the army, but Tejas was no small man. He could get the job done also, you know. So Prabhupada is counting on me. So that's why Prabhupada said Delhi means Tejas. He wanted to honor him in that way.
क्योंकि तेजस प्रभु ऐसे व्यक्ति थे दिल्ली में जो सारे कार्य मतलब किसी भी तरीके से करवा सकते थे। हालांकि जैसे तमाल कृष्ण महाराज है जो पूरे मतलब एक शक्तिशाली सेनापति की तरह पूरे आर्मी को लीड करते थे, तेजस प्रभु उस पर्सनैलिटी के नहीं थे, परंतु फिर भी जितने भी काम होते थे तेजस प्रभु उसको पूरा कर सकते थे।
So the wonderful new home for Shishi Radha Parsarathi, the East of Kailash temple, and now this temple here in Punjabi Bagh, all of this is made possible by the hard work of Tejas Prabhu. As my Prabhupada said, Delhi means Tejas. So everyone is indebted, even if you don't know anything about him, you're indebted to this sincere devotee.
तो जब हम आज देखते हैं जो श्री श्री राधा पार्थ सारथी का एक नया भव्य बहुत ही सुंदर घर जो है ईस्ट ऑफ कैलाश टेम्पल का, तो उसका जो कार्य किया था उसमें तेजस प्रभु का भी बहुत बड़ा योगदान है और हमें उन सबके उनके प्रति कृतज्ञ होना चाहिए।
The next name mentioned here is Gurudas.
जो अगला जो यहाँ पे नाम है वह है गुरुदास।
Gurudas is not known these days either. He's not a high profile personality in ISKCON nowadays.
तो गुरुदास प्रभु के बारे में भी आजकल जो भक्त है ISKCON के वे ज्यादा नहीं जानते कि वे इतने प्रसिद्ध नहीं है आज के दिनों में।
But he used to be married to the famous Jamuna, the cook.
परंतु जो गुरुदास प्रभु थे उनके जो विवाह हुआ था वह बहुत ही प्रसिद्ध जो प्रभुपाद की शिष्या है यमुना देवी माता जी उनसे हुआ था।
Up to somewhere about 3 years later, for some time he was president of Krishna Balaram Mandir. So he had a high profile service at one time in ISKCON.
उन दिनों में गुरुदास प्रभु के पास जो सेवा थी तब वे श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर जो वृंदावन में है उनके वे अध्यक्ष थे।
He's still a devotee. He's not very active, but he lives in the San Francisco Bay Area, Northern California, where I originally came from.
तो वे अभी भी भक्त हैं, सैन फ्रांसिस्को के एक बेन एरिया है वहां पे अभी रह रहे हैं, परंतु उतने ज्यादा वो एक्टिव नहीं है।
वन थिंग अबाउट गुरुदास इज ही इज एन ओशन ऑफ नेक्टर in Prabhupada Lila. He can talk for hours upon end Prabhupada Lila.
और गुरुदास प्रभु के बारे में एक चीज अवश्य कहना चाहेंगे कि वह माता श्रीला प्रभुपाद लीला का जो भी अमृत है उसके वह समुद्र है।
Because for many years he was an intimate associate of Srila Prabhupada.
क्योंकि वह कई सालों तक श्रीला प्रभुपाद का उन्होंने बहुत ही करीबी संग किया।
He also went to London along with his extended. You see, the group of devotees that opened the San Francisco temple, that was Mukunda, who was a household at the time,
और गुरुदास प्रभु उनमें से भी थे जिन्होंने लंदन में जाके कृष्ण भावना अमृत स्थापित किया. उनमें से एक और जो इनके टीम मेंबर थे वे थे मुकुंद प्रभु जो जिन्होंने सैन फ्रांसिस्को में जो मंदिर खोला था.
Then there was Malati, who was at that time married to Shamasundar Prabhu. Shamasundar Prabhu was also a high profile devotee for a long time. He was GBC for a while.
मालती माता जी थी जिनका जो विवाह था वो श्याम सुंदर प्रभु से हुआ था और श्याम सुंदर प्रभु ने भी उस समय बहुत ही महत्वपूर्ण सेवाएं की थी और उस समय वे जीबीसी थे. बहुत उच्च पद्धति के जो उन्होंने सेवाएं थी वो की थी.
Then there was Gurudas and his wife Jamuna.
और फिर गुरुदास प्रभु और उनकी जो भार्य यमुना देवी माता जी.
Then there was Jamuna's sister also. She was also part of this extended family.
और जो यमुना माता जी की जो बहन थी वह भी इस परिवार की सदस्य थी.
Her name was Janavi, Janavi.
उनका नाम जानकी था.
They were a powerhouse of devotion, very hard workers. Of course, Jinamuna, and I would imagine Malati also, and those ladies, and the men must have learned something also of cooking.
तो ये जो छह भक्तों का ग्रुप है ये बहुत ही मतलब भक्ति का एक पावर हाउस के समान थे और बहुत ही मेहनती थे और इनमें से भक्तों ने व्यक्तिगत रूप से श्रीला प्रभुपाद से कुकिंग करना सीखा था.
Of course, they were all trained by Srila Prabhupada to cook exclusively in ghee.
और श्रीला प्रभुपाद ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से कुकिंग करना सिखाया था इन भक्तों को.
If someone can prove me wrong, if someone can prove to me that Prabhupada even once trained the devotees to cook in vegetable oils, then I will surrender. But until you can prove it, I have never heard such a thing. I was in San Francisco, Jamuna was there, and the extended family, and they were all cooking only in ghee, that's all, nothing else. I helped make the ghee.
उस समय श्रीला प्रभुपाद ने इन भक्तों को प्रशिक्षित किया था घी के अंदर कुकिंग करने के लिए. तो महाराज बता रहे हैं अगर कोई मेरे को ये साबित कर दे कि एक भी समय श्रीला प्रभुपाद ने अपने भक्तों को वेजिटेबल ऑयल या आजकल के अलग प्रकार के ऑयल साफ हुए हैं इसके अंदर कुकिंग करना कभी सिखाया तो महाराज बता रहे हैं मैं शरणागत कर दूंगा.
Ajit Gauranga, are you hearing any of this? Ajit, you're hearing? Huh? Oh yeah, but this is a very rare opportunity. How many people can tell you what I'm telling? How many? Oh, they appointed him. Okay. And if you can hear something of this also, that's very good. Okay, good. Please do that. So, this was a very wonderful extended family. They had huge bhakti shakti.
और ये बहुत ही अद्भुत परिवार था इन भक्तों का और उनमें बहुत ही भक्ति की शक्ति थी.
And they were the ones who opened the London temple. Gurudas was amongst the ones with Malati and Shamasundar. And yes, Jamuna, they were a very powerful extended family, very powerful. In terms of bhakti, they were highly empowered. Prabhupada was so impressed when they went to London. So that's who Gurudas is.
And Gurudas Prabhu, jo the, jo ye bhakt gaye the, Shyam Sundar Prabhu, Malati Mataji, Janki Mataji, इन सब ये जो छह भक्तों का समूह था जो इन्होंने सबसे पहले जाके लंदन में प्रचार प्रारंभ किया और श्रीला प्रभुपाद बहुत ही ज्यादा इनसे इनके इनको बहुत सराहना करते थे इन भक्तों की कि उन्होंने लंदन जैसे देश में जाके कृष्ण भावना अमृत की स्थापना की. तो गुरुदास प्रभु इन पूरी टीम में से थे.
दे ओपन द लंदन टेंपल एंड द मैनर वाज डोनेटेड बाय जॉर्ज हैरिसन. The preaching was fantastic. They were going, I mean, for a small crew, they were doing television and radio and huge media campaign. They were doing also huge media campaign, so much publicity they were getting. incredible results that that group was producing.
उस समय जब लंदन में मंदिर खोला और जॉर्ज हैरिसन ने अपना जो पूरा एक बहुत बड़ा बंगला था उसको दान में दिया श्रीला प्रभुपाद को, और ये हालांकि 6-7 भक्त थे, बहुत छोटा सा ग्रुप था, परंतु जिस हिसाब से वे प्रचार कर रहे थे अलग अलग रेडियो चैनल्स में, टीवीज में इनका पूरा कवरेज किया जा रहा था, तो जब वे प्रचार में जो रिजल्ट जो प्रोड्यूस कर रहे थे वे बहुत ही बड़े पैमाने पे थे, और ये सब गृहस्थ थे.
So Prabhupada was so pleased, he was feeling what need is there for sannyasis. If householders can accomplish such wonderful things in preaching, what need is there for sannyasis?
और श्रीला प्रभुपाद इनके इस कार्य से इतने प्रसन्न थे, मतलब प्रभुपाद सोचते थे अगर गृहस्थ ऐसे कार्य कर सकते हैं तो सन्यास की आवश्यकता ही क्या है.
Sometimes he would say better than a sannyasi. A householder preacher who has controlled senses. Sometimes we consider better than sannyas.
तब श्रीला प्रभुपाद बताते थे कि ऐसे गृहस्थ जो प्रचारक हैं और जिनकी इंद्रिय संयम है वे सन्यासी से भी श्रेष्ठ हैं.
So the devotees were getting married, and there was a lot of marriages around about that time.
उस समय बहुत ही मतलब विवाह भी संपन्न किए गए.
But then as more and more reports came to Prabhupada that the married devotees were engaged in nonsense, then he lost all his enthusiasm for this idea of married devotees for if they were not going to follow the regular principles and be serious about pushing on the preaching movement the way the first dedicated devotees did. So that is a whole different story. So he changed his mood when he saw that they were later so many householders were not serious.
परंतु श्रीला प्रभुपाद के पास अन्य अन्य स्रोत से सूचनाएं भी गई कि जितने भी भक्त विवाह कर रहे थे उनमें से अधिकतर नियमों का पालन नहीं कर रहे थे, तो श्रीला प्रभुपाद को यह सुनकर बहुत दुख हुआ था और तो उनका जो मूड था वह चेंज हुआ.
So I'm going to continue reading about Delhi preaching in the pandal that they prepared. The VIPs, the politicians, okay. These persons had granted permission and issued letters of introduction to others whom the devotees had then approached for donations.
इन लोगों ने अपनी सहमति दे दी थी जो मेयर और नई दिल्ली के प्रबंध लोग हैं, और अन्य लोगों के लिए परिचय पत्र भी दे दिया था. तब भक्त जन उनके पास अनुदान के लिए गए थे.
The devotees found everyone they met sympathetic to Srila Prabhupada.
भक्त लोग जिन लोगों से मिले उनमें से प्रत्येक व्यक्ति प्रभुपाद के प्रति सहानुभूति पूर्ण था.
They respected him especially after meeting him.
सब लोग उनका सम्मान करते थे विशेषकर उनसे मिलने के बाद.
Some degrees disagreed philosophically.
वैचारिक स्तर पर कुछ की उनसे असहमति थी.
Yet all were impressed by Prabhupada's converting Westerners to Hindu Dharma and God consciousness.
तो भी सभी इस बात से प्रभावित थे कि प्रभुपाद ने पाश्चात्यों को हिंदू धर्म और कृष्ण भावनामृत में दीक्षित किया था.
And they had genuine respect for Prabhupada's worldwide propagation of the teachings of Bhagavad Gita.
और उनके द्वारा भगवत गीता की शिक्षाओं के विश्वव्यापी प्रचार के प्रति लोगों के मन में वास्तविक श्रद्धा उत्पन्न हो गई थी.
So 1971, those were different times.
1971 का जो समय है वह आज के समय से बहुत ही अलग था.
Of course, even in 2012, there are still some, we still have support from members of parliament, some VIPs, we still cultivate. ISKCON has a very good reputation, generally speaking. So we still have a lot of VIP support for ISKCON.
तो आज के समय 2012 में जो ISKCON संस्था है बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत ही सम्मानित संस्था है, और बहुत सारे जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं या बहुत VIPs हैं इसका सपोर्ट करते हैं.
But in many ways the preaching is more difficult now because of the massive westernization caused by satellite TV.
परंतु आज के समय में प्रचार करना और भी मुश्किल हो गया है क्योंकि जब पाश्चात्य देशों की संस्कृति जो यहाँ पे आ रही है टीवी के माध्यम और इंटरनेट के माध्यम से.
प्रैक्टिकली देयर वाज नो टीवी इन इंडिया इन
1971 में व्यावहारिक रूप से यहाँ पे कोई भी टीवी नहीं था.
If there was any television in India in those days, it was extremely isolated, very isolated, because they didn't have the broadcast system. They didn't have the satellites, weren't even capable of broadcasting, weren't even invented yet. So how they could broadcast from America? How could they import all the sinful rubbish without a satellite, you see?
1971 में अगर यहाँ पे टेलीविजन होता तो शायद स्थिति कुछ और ही होती. और बहुत ही मुश्किल था 1971 में भी कि जो सैटेलाइट्स वगैरह थी इतनी सशक्त नहीं थी कि ब्रॉडकास्ट कर सके. जो अमेरिका में इतने पापमय कार्य किए जा रहे हैं उनका ब्रॉडकास्ट दिल्ली में हो.
यू यंग पीपल दैट आर ऑल यू नो कंडीशन टू मोबाइल फोन्स लैपटॉप कंप्यूटर्स यू नो लेट मॉडल कार्स एंड ऑल दीस थिंग्स यू हैव नो आइडिया व्हाट इट वाज लाइक इन इंडिया इन 1971. यू कैन यू कुडंट रिलेट टू इट. यू वुड थिंक यू वर ऑल्दो यू वर बोर्न एंड रेज्ड इन इंडिया बट you would think you were in a third world country, foreign country, if you went into a time machine and went back to 1971, you would say, oh my God, is this, am I in India or did I get dropped somewhere else? This is what would happen if you weren't put back in a time machine.
So, aaj jitne yuva varg hain aaj apne mobile, laptop aur phone se, matlab, ab isi cheezon mein pale hue hain. परंतु अगर आपको 1971 में ले जाया जाए और उस समय जो टेक्नोलॉजी थी या उस समय जो मशीनें थी अगर वो आपको दिखाई जाए तो आपका शायद इस प्रकार से इसका रिएक्शन हो कि मैं कहां पे आ गया हूं. क्या ये भारत ही है या मेरे को किसी बहुत ही ऐसे देश में डाल दिया, छोड़ दिया गया है.
1971 इवन द टेलीफोन सिस्टम इन इंडिया वाज 1800s टेक्नोलॉजी. ओह यस, कम ऑन, दिस इज हिस्ट्री. Even when I came in 1974 to India, the telephone system was 1800s technology. I'm not joking.
1971 में जो टेलीफोन की सुविधा भी थी वह भारत में जो अन्य देशों में 1800 के दशक में जो यूज होती थी तो भारत में वो 1971 में यूज होती थी.
Of course, in 1800s, the telephone to make it work to activate the telephone of battery or something, you had to crank it first. You had to crank the phone and then before you could talk. I guess, I don't know, it was activating a battery system or something.
जो 1800 के दशक में जो टेलीफोन यूज किए जाते थे तो एक कॉल करने के लिए उसकी बैटरी को रिचार्ज करना था और उसके लिए बहुत जोर जोर से कुछ घुमाना पड़ता था.
When I first came to India in 1974, it was only 3 years later.
तो जब मैं 1974 में पहली बार भारत में आया 93 साल बाद.
Quality of the phones was only slightly better than 1800s technology from the US.
तो जो यहाँ पे फोन की क्वालिटी थी वह 1800 के दशक की थी.
It looked like a modern phone. I mean, in 1800s the phones were wooden boxes, you know, and it had a receiver and it had a mouthpiece you spoke into. You had to turn the crank, but they didn't look like that. I mean, it was a modern-looking plastic phone, but the result was the same.
हालांकि उस समय जो फोन थे बहुत ही आधुनिक लगते थे उस जमाने के हिसाब से, परंतु उसमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही थी वह बहुत ही पुरानी थी.
As the phone lines weren't any good. The problem was the phone lines weren't any good. Phone lines weren't any good.
और जो फोन लाइन्स थी वह भी कुछ खास नहीं थी.
So the reason I say it's like the 1800s is because you'd have to say, hello, hello, hello. Can you hear me? Hello, hello. That's the way it was in 1974 in India. Mainly on long distance calls, you know, if you're trying to call, especially if you're trying to call internationally, it was very difficult. There's no satellites, you know, I don't know. There were, in those days, there were undersea cable. There was no satellite. So there was what's called the transatlantic cable. There were cables that went under the ocean, all the way across the Atlantic Ocean. So you can imagine, you know, if there was any technological problem, forget it, you know.
जो 1974 के दशक में अगर टेलीफोन पे किसी ने एक बात भी करनी होती थी तो इतनी बार हेलो हेलो बोल के वो वैसे ही परेशान हो जाता था. और अगर इंटरनेशनल कॉल है तो ये तो लगभग असंभव ही होता था क्योंकि उस समय सैटेलाइट नहीं थी उस समय पूरे महासागर के नीचे एक बड़ी सी केबल डाली गई थी, तो आप सोच सकते हैं तो उस समय कैसा
होगा। We see that how all these VIPs were very receptive to Prabhupada, even if they were Mayavadis and so forth. I mean, this statement that they didn't agree philosophically suggests that they were Mayavadis or hung up on demigod worship, one or the other, or both, usually both.
हालांकि उस समय जो बड़े बड़े लोग थे भारत में VIPs और जो पार्लियामेंट के अलग अलग व्यक्ति थे वो मायावादी थे और दार्शनिक रूप से श्रीला प्रभुपाद से सहमत नहीं थे, परंतु फिर भी वे श्रीला प्रभुपाद से बहुत ज्यादा प्रभावित थे और उनका सम्मान करते थे।
So we'll continue reading the next paragraph. Next paragraph. Prabhupada had great stature among the Indians as a sadhu.
एक साधु के रूप में भारतवासियों के मध्य प्रभुपाद का व्यक्तित्व महान था।
Speaking only on the basis of scriptures, he exhibited full surrender to Lord Krishna.
केवल शास्त्रों के आधार पर अपनी बात कहते हुए वे अपने आप को पूर्ण रूप से कृष्णार्पित प्रदर्शित करते थे।
He was above politics and sectarianism.
वे राजनीति और सांप्रदायिकता से सर्वथा ऊपर थे।
He was fully spiritual and commanded respect.
वे पूर्णतः आध्यात्मिक और आदरणीय थे।
Everyone, regardless of personal philosophies or practices, seemed to accept him as a true representative of Indian culture, a genuine sadhu and guru.
व्यक्तिगत विचारधारा या आचरण किसी का कैसा भी हो, प्रत्येक व्यक्ति उनको भारतीय संस्कृति का सच्चा प्रतिनिधि, विशुद्ध साधु और गुरु मानता था।
As what Prabhupada did by bringing white elephants back to India, that was unprecedented.
जो श्रीला प्रभुपाद ने किया अपने विदेशी शिष्यों को भारत में लाते तो वह बहुत ही अद्वितीय कार्य था भारत की हिस्ट्री में।
After all, when Prabhupada was struggling here, right here in New Delhi also, it's there. Nityanam put on a play once about how Prabhupada was trying to distribute Bhaktivedanta magazines in the blazing sun. He didn't have any hat and he had a heat stroke. I think that may have been at Connaught Place, you know, somewhere where there was a congregation of people.
पाश्चात्य देशों में जाने से पहले श्रीला प्रभुपाद दिल्ली शहर में ही कनॉट प्लेस एरिया में व्यक्तिगत रूप से अपने पुस्तकों का वितरण करते थे और एक बार उन्होंने गर्मी के समय पुस्तक वितरण करते समय हीट स्ट्रोक भी हुआ और वह बेहोश होकर सड़क पर गिर गए थे।
Even in Vrindavan, when he would discuss his plans for preaching in the West, they would say, "Oh, very nice, Swamiji, very nice."
और जब श्रीला प्रभुपाद वृंदावन में भी अपने प्लान्स को डिस्कस करते थे पाश्चात्य देशों में प्रचार के लिए, तो हर कोई बस सिंपल यही कहता था, बहुत अच्छा स्वामी जी, बहुत अच्छा।
So can you help me? Can you send maybe somehow or other arrange maybe just one man, or perhaps you can arrange a few donations to help finance my preaching or my presenting Indian culture in the West? Can you do that? You know.
अतः जब श्रीला प्रभुपाद पूछते थे तो क्या आप मेरी इसमें सहायता कर सकते हैं किसी भी रूप से, या मैं कोई टिकट पाश्चात्य देशों में जाने के लिए अरेंज करके या फिर कुछ डोनेशंस जिससे मैं इस भगवत गीता को प्रेजेंट कर सकूं लोगों के सामने।
वेरी सॉरी स्वामी जी, आई एम सो बिजी यू नो एंड सो आई डोंट हैव द टाइम एंड रिसोर्सेज, बट गुड लक आफ्टर व्हाट यू आर डूइंग इज वेरी गुड आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक। दिस वाज इट्स द एटीट्यूड ऑफ द इवन द ब्रजवासीज, यू कुड से दे गिव देयर ब्लेसिंग्स बट एब्सोल्युटली नो हेल्प।
और उस समय जो लोगों का जो प्रतिक्रिया होती थी वह यही कहते थे कि ओ स्वामी जी, अभी तो मैं बहुत व्यस्त हूं, तो अभी मेरे पास इतना समय नहीं है, परंतु आप जैसा जो कार्य है बहुत ही नेक है, आप इसको निश्चित रूप से कीजिए। और यही एक ब्रजवासी की भी मानसिकता होती थी उस समय।
So when Sri Prabhupada came back with white elephants, the people were stunned.
जब श्रीला प्रभुपाद अपने पाश्चात्य शिष्यों के साथ आए जिन्हें नाचते सफेद हाथी, प्रभुपाद इंग्लिश में कहते थे डांसिंग व्हाइट एलिफेंट, तो जो लोग थे बहुत चक्के रह गए थे।
No one had ever done this before.
किसी भी व्यक्ति ने पूरे हिस्ट्री में ऐसा कभी भी नहीं किया था.
विवेकानंद ही हैड ब्रीच्ड ही हैड ब्रीच्ड मायावादी फिलॉसफी अमंगस्ट द वेल्थी अपस्टेट न्यूयॉर्क वेल्थी मोस्टली वेल्थी विडोड वुमेन हु वुड he was a very handsome man you know and they would give him lots of money and he would say I am the foremost guru in India and oh okay bashish
to kuch logon ne pehle jaake paschatya desho mein mayavad darshan ka prachar karne ka prayas kiya hai unme se ek vyakti the jo bahut hi dikhne mein bahut sundar the to main jaake is tarah prachar karte the ki main bharat se aaya hu aur bharat mein main sabse bada guru hu. और जब लोग कहते थे अच्छा तो कहते थे मेरी बख्शीश डोनेशंस मांगते थे.
Then he would take group photos with himself and you know because he would give lectures, he would give talks, but he didn't go to upstate New York like Prabhupada. I mean the Bowery, the slums of New York like Prabhupada. No, he went only to the wealthy elitists who were interested in Indian culture, that's all. And only wealthy people, that was his ministry.
और तब जो ऐसे व्यक्ति थे सिर्फ उन्हीं वर्ग के पास गए जो बहुत ही धनी वर्ग के थे और उन्हें कुछ कुछ रुचि थी भारतीय संस्कृति में, परंतु वे ऐसे नहीं गए जिस तरह शिला प्रभुपाद बौर स्ट्रीट में जाके रहे और पूरा इसका प्रचार किया वैदिक.
And many widows, many wealthy widows were attracted by this very charismatic and handsome young Indian guru. They thought he was wonderful, so happily they gave so much money.
और ऐसे बहुत ही धनी जो वहाँ पे उस समय पाश्चात्य देश में जो विधवाएं थी, तब वह ऐसे व्यक्ति से मिलती थी तो उनसे बहुत इम्प्रेस हो जाती थी और उनको धन लक्ष्मी देती थी.
So then he would take all these group photos in America with Americans.
और तब ये व्यक्ति वहाँ पे ग्रुप फोटोज लेते थे अमेरिकन्स के साथ.
And he go back to India.
और भारत में वापस जाकर
you see how I am the most famous foremost guru in America and show the photographs.
वहां पे जाके भारत में वापस आके इस चीज का प्रचार करते थे कि देखिए कि मैं अमेरिका में कितना बड़ा गुरु हूँ, सबसे बड़ा गुरु मैं ही हूँ वहां पे.
But he was not a Vaishnava.
परंतु ये व्यक्ति वैष्णव नहीं थे.
And when he came back to India, he didn't bring with him an army of white elephants. He didn't. So Prabhupada was the first.
और जब ये व्यक्ति वापस आए तो अपने साथ किसी भी वहां के अपने शिष्य को साथ में नहीं लाए. इसलिए शिला प्रभुपाद पहले व्यक्ति थे पूरे इतिहास में जो पाश्चात्य देशों से शिष्य को परिवर्तन करके भारत में लाए थे.
प्रभुपाद की जय. रिवोल्यूशनरी. सो द इंडियंस कुड अंडरस्टैंड दैट हाउ ओह ही मस्ट बी इनडायरेक्टली आई मीन नॉट इंटेलेक्चुअली बट समवेयर इन देयर हार्ट्स they must have understood that he was at least a vesh, that he was divinely empowered to pull off such a, you could say, stunt. You know the word stunt? Stunt. Like in a circus or something. To pull off this incredible, well, perhaps it's better to say miracle, of bringing Westerners, youth, to India and introducing them, converting them to Indian culture. They were very very impressed. Nobody had done this before.
और अगर हम 1971 के समय में जाके इस बात को सोचने का प्रयास करें कि जो शिला प्रभुपाद ने किया, तो वहाँ पे जितने लोग थे उस समय सूक्ष्म रूप से वे समझ पाए कि शिला प्रभुपाद में एक विशेष प्रकार की शक्ति थी. इतिहास में पहले किसी ने भी ऐसा नहीं किया कि जो पाश्चात्य देशों के जो लोग हैं उनको भारतीय संस्कृति में परिवर्तित करके भारत में लाए हों.
There were very few Indian devotees in those days. Lokanath Swami came fairly early. I don't know what year, but do you know what year? I don't know what year. Lokanath Swami, and of course, as long as Gopal Krishna Goswami was actually from Canada, so although he has Indian body, technically he was not an Indian. Technically, I mean, I don't know what year. What year did he take initiation, Gopal Krishna Maharaj?
उस समय जो भारतीय भक्तों की संख्या बहुत कम थी.
68
लोकनाथ महाराज जो है वह एक भारतीय थे. गोपाल कृष्ण महाराज हालांकि उनका भारतीय शरीर है परंतु वह कनाडा में जुड़े थे 1968 में.
Would have been in Canada, probably Toronto, I suppose. Was it Toronto? Huh? Montreal. Montreal, yes. Maybe he took at the same time as Jayaprakash Swami. He did take at the same time. Yeah, so that was December. That was December of 1968. Jayaprakash Swami and Niruddha Maharaj, and they took at that time.
और 1968 में दिसंबर के मास में गोपाल कृष्ण महाराज ने और जयपताका महाराज ने एक साथ उस समय दीक्षा प्राप्त की थी श्रीला प्रभुपाद से.
But in India, as far as Indian citizens are concerned, they came slowly. Even by 1977, there were still not a large numbers of Indians.
और जब भारत में जब भक्तों की संख्या धीरे धीरे बढ़ी, हालांकि 1977 में भी जब भारतीय भक्तों की संख्या बहुत ज्यादा अधिक नहीं थी.
I was on a famous World War III morning walk in Mayapur with Prabhupada.
तब मैं महाराज बता रहे हैं कि वह प्रभुपाद के साथ एक मॉर्निंग वॉक में थे मायापुर के.
That time the Cold War was going on between the US and the former Soviet Union. Tensions were very high, and it was expected at any moment war might break, nuclear war. I mean, not just any war, nuclear war might break out at any moment. It was very high tensions in those days.
तो उस समय एक शीत युद्ध चल रहा था अमेरिका में और जो पुराना सोवियत यूनियन है उसके बीच में, और किसी भी समय एक बहुत तेज गति से युद्ध प्रारंभ हो सकता था.
So that time Ramaswar, he was talking with Prabhupada, but if there's nuclear war, then there will be nuclear fallout, pollution.
अगर जो रामेश्वर प्रभु थे उस समय, वह श्रीला प्रभुपाद से पूछ रहे थे, अगर एक ऐसा युद्ध हो जाता है, तो उस समय बहुत ही न्यूक्लियर वेस्टेज और उस समय जितने जितना प्रदूषण होगा न्यूक्लियर सब्सटेंसेस से बहुत अधिक होगा.
How things will go on, the whole environment will be polluted.
तो उस समय प्रकृति में सारी चीजें कैसे होंगी, क्योंकि हर जगह प्रकृति प्रदूषित हो जाएगी.
Sri Prabhupada's response was, the environment's already polluted, as if it was no big deal to add nuclear radiation to the mix, you know.
तो श्रीला प्रभुपाद की प्रतिक्रिया थी, उन्होंने कहा कि प्रकृति तो पहले से ही प्रदूषित है.
But what was, so Prabhupada was not worried about that, but what was his big concern? What was his big concern? He was very concerned about something else.
तो उस समय श्रीला प्रभुपाद इतने ज्यादा चिंतित नहीं थे इस युद्ध को लेकर, वे चिंतित थे किसी और विषय में.
That something else was that if war breaks out, because India at that time was allied with the former Soviet Union, they were very close. They're still close with Russia. That's why we won the Bhagavad Gita case, because India and Russia are very close.
तो श्रीला प्रभुपाद उस समय सोच रहे थे कि अगर युद्ध हो जाता है, तो जो भारत है वह था सोवियत यूनियन के साथ, और भारत और रशिया बहुत करीबी देश हैं, इसलिए जो भगवद गीता का केस हुआ मैं भारत इसको पे विजय प्राप्त कर सका.
So Prabhupada's anxiety, transcendental anxiety, not mundane, but transcendental anxiety.
जो तब प्रभुपाद की जो चिंता थी, दिव्य चिंता, साधारणता चिंता नहीं, परंतु दिव्य चिंता थी.
If there is war, then the foreigners will be asked to leave India.
अगर उस समय युद्ध होगा तो जितने भी फॉरनर्स हैं उनको ये आदेश आ जाएगा कि आप देश छोड़ के चले जाइए.
Because at that time the Indian temples that were established by 1975, they were managed by Westerners, not by Indians. Although as long as Gopal Krishna Maharaj was already GBC for Vrindavan, Krishna Balaram Mandir, he was in by 1975 he was already GBC.
क्योंकि 1975 में भारत में जितने मंदिर थे तो वह पाश्चात्य देशों से जो भक्त आए हैं उनके द्वारा संचालित किए जाते थे.
But by 1975 there was Juhu temple, the property was already being developed, and there were other projects in India. So Prabhupada's anxiety will be if the foreigners are asked to leave, then who will manage who will manage the Indian temples.
1975 में जुहू मंदिर भी था और तब श्रील प्रभुपाद की चिंता थी कि अगर फॉरनर्स को यह आदेश मिल जाता है कि वह भारत छोड़ के जाएं युद्ध के कारण तो मंदिर का जो संचालन है वह कौन करेगा.
Because you have to put things in a proper perspective. Now, Lokanath Swami opened, built his, from the ground up his own temple in South India, and so now he's managing like anything, such a big management that he's doing now. But in those days, he was a very young man with no management history.
So, if we look at Srila Prabhupada's perspective, जैसे कि आज अगर लोकनाथ महाराज का उदाहरण लें तो वे बहुत ही बड़ी बड़ी सेवाएं कर रहे हैं और बहुत बड़े बड़े स्तर पर संचालन कर रहे हैं कि जैसे उनका दक्षिण भारत में एक बहुत बड़ा मंदिर भी महाराज ने खोला. परंतु उन दिनों में सारे भक्त बहुत ही नए भक्त थे और इतने एक्सपीरियंस नहीं थे. उस समय वह एक पद यात्रा का संचालन कर रहे थे.
Of course, that required some management, but it was a small operation in comparison to trying to, you know, manage the new Juhu temple or manage Krishna Balaram Mandir. And actually, even in the early days, managing Krishna Balaram Mandir was tough.
और उस समय शुरुआत के दिनों में जो मैनेजमेंट वगैरह किया जाना होता था जैसे विशेषकर जो वृंदावन में मंदिर है कृष्ण बलराम मंदिर तो वह बहुत कठिन था.
1974, when Indira Gandhi was in charge of India, she had restrictions on cement. She created an artificial cement shortage, so the devotees were having trouble getting the cement to build the temple of Krishna Balaram. Its construction was behind schedule. Prabhupada was very upset, and he used to hold His Holiness Gopal Krishna Maharaj responsible. So that was tough because there was so much circumstances beyond his control. But the way Prabhupada was, you know, even if things were beyond your control, still he held you responsible. So it was not very easy to take such big responsibility for Prabhupada ever. We'll just think of it in those days.
Because 1974 के समय जो देश की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी उनके ऊपर restrictions होने के कारण जो cement था वह इतनी आसानी से नहीं मिलता था, बहुत ही लिमिटेड मात्रा में होता था. तो उस समय भक्तों को बहुत ही ज्यादा कठिनाई आ रही थी कि सीमेंट को प्राप्त करने के लिए जिससे वह मंदिर का निर्माण कर सकें. तो उस समय जो स्थिति थी बहुत ही कठिन थी और श्रील प्रभुपाद फिर भी भक्तों को बहुत डांटते थे और उनको जिम्मेदार ठहराते थे कि जो कार्य है उसको डिले करने के लिए, लेट करने के लिए. तो हम देख सकते हैं कि उस समय जो चीजें थी बहुत ही कठिन थी संचालन
करना. From America and put them on stage as, you know, trophy, you know the word trophy? Put them on stage as trophies, you know, like, you know, hunters go out and put an elephant head. Instead, Srila Prabhupada, he came back with Western young men and women. And so this was a great victory and the Indians took it serious. Then he took his mission serious.
तो उस समय श्रील प्रभुपाद जो पाश्चात्य देशों से अपने शिष्यों को लाए थे वे स्टेज पे उनको एक पुरस्कार के रूप में, ट्रॉफी के रूप में रखते थे जिन्हें सिर्फ देखने मात्र से जितने भी भारतीय थे वे बहुत ही ज्यादा प्रभावित हो जाते थे और वे प्रभुपाद को बहुत गंभीरता से लेते थे.
Right, we'll stop there. Anyone have any questions, comments?
तो यहीं पे विराम देंगे. आप में से किसका कोई प्रश्न या टिप्पणी है?
Question machine is out of petrol today? You're the question machine. You're out of petrol today? Yes. He's not out of petrol. Jai Haribol. Now what? Who was empowered? I forget the exact number, but anyways, it was that extended family who were empowered. They went to London and they were very empowered. How can you be empowered to do preaching for Prabhupada? Please repeat the question. That's a good question.
तो प्रवीण ने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है कि महाराज ने जैसे बताया कि जो प्रभुपाद के छह शिष्य थे मुकुंद प्रभु और अन्य श्याम सुंदर प्रभु, गुरुदास प्रभु और इनकी जो पत्नियां थी, जिन छह भक्तों का जो समूह था, उन्होंने लंदन में जाकर प्रचार स्थापित किया। तो इतने ज्यादा उनको शक्ति प्रदान की गई, वो एम्पावरमेंट प्रदान की गई श्रील प्रभुपाद से। तो प्रभु जी पूछ रहे हैं कि हम भी ये शक्ति किस प्रकार से प्राप्त कर सकें कि जिससे हम भी प्रचार में लग सकें।
The answer is the same as it was in 1971.
तो महाराज बता रहे हैं कि उत्तर आज भी वही है जो 1971 में उत्तर था।
Surrender to Guru.
गुरु के प्रति शरणागत हो।
You are initiated devotee. You're supposed to know something about what your Guru Maharaj wants.
आपको दीक्षित, आप दीक्षित भक्त हैं और आपको गुरु महाराज के बारे में पता होना चाहिए।
Just like Srila Prabhupada built an army of white elephants.
जिस प्रकार से श्रीला प्रभुपाद ने एक सफेद हाथियों की फौज खड़ी कर दी।
Now His Holiness Gopal Krishna Maharaj is building armies to increase the preaching work, especially in India, because this is his primary zone. So he is trying to create lieutenants, at least lieutenants, and one day generals.
तो आपको जानना चाहिए कि जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद ने एक पूरी फौज खड़ी कर दी, उसी प्रकार से श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी, जो उनके अपने अपने क्षेत्र हैं, उसमें एक ऐसी फौज तैयार कर रहे हैं।
He created Keshav Maurya. Now Keshav Maurya is a general in his army.
उन्होंने केशव मुरारी प्रभु को बनाया, किस प्रकार से वह भी एक जनरल है आर्मी में।
Managing the brand new Rohini construction project very nicely. And all those big men donors out there, he manages to keep them satisfied. You know, that's not so easy. It requires expertise.
और महाराज बता रहे हैं कि किस प्रकार केशव मुरारी प्रभु, जो अभी रोहिणी मंदिर का निर्माण हो रहा है और प्रगति में है, इसका बहुत ही अच्छे रूप से संचालन कर रहे हैं, और कैसे वहाँ पे जो बड़े बड़े लोग आते हैं, जो डोनेशन देते हैं, उन सबको बहुत ही संतुष्ट रखते हैं। ये कोई आसान कार्य नहीं है, इसमें बहुत ही एक्सपर्टीज चाहिए होती है।
प्रीवियसली देयर वाज फाइटिंग बिटवीन दीज बिग टाइटन्स, यू नो द कांसेप्ट ऑफ टाइटन, टाइटन इज ग्रीक माइथोलॉजी, एनीवेज बिग देवास मींस टाइटन, टाइटन मींस बिग देवास, एंड दे वर यू नो एम्बिशियस मेन विद लॉट्स ऑफ मनी, एंड दे वर व्हाट यू कॉल you know, pushing elbows to see who could become, you know, most prominent in the project, all these things.
पहले जो इसमें जो चीजें थी इतनी ठीक नहीं थी, आपस में युद्ध हुआ करता था कि बड़े बड़े लोग जो बिजनेसमैन हैं, वे कौन ज्यादा प्रोमिनेंट बनेंगे, किसकी ज्यादा प्रसिद्धि होगी।
But one of the big patron donors who were, they're also on the, you know, board of directors for the project.
उनमें से एक और जो भक्त हैं, जो अच्छे डोनर थे।
He told Keshav Maharaj, actually a very big compliment.
उन्होंने केशव महाराज प्रभु को एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया।
He said, previously we were quarreling.
उन्होंने बताया कि पहले हम आपस में झगड़ रहे थे।
Then he said, now it's like all the wild animals now are peacefully drinking out of one pond, the tigers, the deer, the elephants and the rabbits all peacefully drinking out of the same pond. This is very wonderful what you've accomplished. This is what they told him, you know.
परंतु आज के समय में हम अगर देखें कि जो बड़े हाथी, जंगली हिरण वगैरह, हर कोई व्यक्ति जो अलग अलग प्रकार के पशु हैं, वे एक ही प्याले से पानी पी रहे हैं।
We see at this Punjabi Bagh temple that the devotees make advancement really fast. Not just externally, because you can't just be promoted artificially to management, because then there will be lack of competency and there will be false ego, you see. It's not just external, but we see at this temple the devotees make spiritual advancement because they stick with their sadhana. That's why they stick with hearing and chanting, they stick with kirtan. And if you do that, you become purified. If you become purified, then you can gradually accept more and more responsibility for Guru Gauranga. That is the formula.
तो हम देखें कि पंजाबी बाग मंदिर में भी बहुत सारे भक्त बहुत तेज गति से प्रगति कर रहे हैं और प्रगति सिर्फ बाह्य रूप से नहीं कि अन्य अन्य प्रकार की पोस्ट उन्हें मिल रही है नहीं जो प्रगति होती है वह बहुत आंतरिक होती है और ये प्रगति तब की जाती है जब कोई भक्त बहुत ही गंभीरता से श्रवण और कीर्तन करें
सो ट्राई टू डू लाइक दैट
इस प्रकार से करने का प्रयास
कीजिए 5 years, these Prabhus who went and opened the London temple in 1969, 3 year devotees. So you got it, you're on what's called Easy Street. Easy Street, you've got it, you know, it's like being, you know, the mission's being handed to you on a gold plate in comparison to the, you don't think so. The mission, the preaching mission is being handed to you and your godbrothers on a gold plate. There's not a fraction of the struggle that these pioneers had to deal with. You know the word concept, pioneer? Yes.
So Maharaj puch rahe hai ki aapko kitne saal ho gaye hai Krishna Bhavna Vrit mein? Rohin ne uttar diya 5. तो महाराज बता रहे हैं कि जब भक्त लोग लंदन में जाके उन्होंने प्रचार प्रारंभ किया वे 3 साल के भक्त थे जिन्हें सिर्फ 3 साल हुए थे आंदोलन में तो आज के समय जो आपको सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं वह एक सोने की थाली पर रख के सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं और जो हमें आज स्ट्रगल करना पड़ रहा है इसका कोई भी मतलब रंच मात्र भी नहीं है जो स्ट्रगल जो संघर्ष उस समय लोगों ने किया भक्तों ने किया जिन्होंने आंदोलन का प्रारंभ किया था
बिकम एक्सपर्ट इन द फिलोसफी एक्सपर्ट नाउ व्हाइल यू आर यंग व्हाइल योर ब्रेन इज गुड डोंट वेट टिल योर एज 66 लाइक मी यू नो व्हाइल यू आर यंग व्हाइल योर ब्रेन इज यंग एंड शार्प लर्न यू नो 800 श्लोकस और समथिंग यू नो एंड देन यू नो लर्न द आर्ट ऑफ कोऑपरेशन लर्न how to take instruction and become more learn how to teach now you have to learn how to teach after 5 years then you can learn how to teach
so aap jo siddhant hai isme bahut nipun hui hai aur khas kar jab aapka jo brain hai bahut hi yuva hai to isko aap bahut achhi tarah se use kijiye kai sare shlok yaad kijiye 800,000 shlok yaad kijiye aap ye is cheez ka intezar mat kijiye ki kab aap boodhe honge meri tarah और तब कब सिद्धांत पे आपकी निपुणता होगी
बट वन ऑफ द रिट्रीट्स आई डोंट नो इफ द येलो बॉयज वेंट देयर देन बट एट वन ऑफ द बहादुर के रिट्रीट्स व्हेन द ब्रह्मचारीज वेंट फॉर द रिट्रीट दैट वाज व्हेन मोरेली गॉट हिज नोज ब्रोकन प्लेइंग सॉकर आई डोंट नो इफ इट वाज ब्रोकन बट इट वाज यू नो It was a rough game. Everybody came back beat up. But also at that time, I was told that they were practicing giving class. Those that were not yet, say, giving Bhagavad Gita class on a week, that they were practicing. So I hope that something like that will also be done. You know, they have to practice. They have to practice what it feels like to sit down in front of a group, feel the heat. Get used to you know interacting get used to not worrying about the audience and so forth you have to get used to, takes practice
aap sabko siddhant mein bahut hi nipun hona chahiye aur is baat ka abhyas karna chahiye ki kis prakar se hum is siddhant ko acche roop se prastut kar sake aur janta ke samne to iske liye bahut abhyas ki avashyakta hoti hai
I was 1 year devotee in 1969 I started giving classes And the devotees, they used to compliment me, you know. I mean, I know, did I know in 1969? Not very much, you know, but still because by mercy of Prabhupada, I was able to give nice classes with so little, you know, background, only 1 year. Still, they liked my classes, you know. So 5 years, yeah. You got
so Maharaj bata rahe hai ki jab mere ko ek saal hi hua tha andolan mein, मैं तब से क्लासेस दे रहा हूँ और उस समय एक साल का जब था तब श्रीला प्रभुपाद की क्लासेस इतनी ज्यादा नहीं हुआ करती थी, तो फिर भी लोग सुनते थे। जो आंदोलन में जिसको एक साल हुआ है उनसे भी भक्त सुनना प्रसन्न करते थे। तो आपको तो 5 साल हो गए।
We'll stop there. Jaga Guru Srila Prabhupada ki jai, Lilamrita ki jai, Ekadasi ki jai, O Premanandi Hari Hari Bolo.
As well as Bhakti Madhuri Govind Maharaj ki jai.